الرحمن الرحيم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین کرام اس نشست میں میری تقریر کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہدایت کا ماخذ اب قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے اس زمین پر اب کسی اور شخص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں آدمی اس پر کامل اعتماد کر سکے یہ حیثیت اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ان پر نبوت ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب اگر ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتی ہے تو بجا طور پر رجوع کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ہم کو اس دین کی تعلیم دی ہے جس دین کو وہ اس دنیا میں لے کر آئے تھے یہ تعلیم قرآن مجید کی صورت میں بھی موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں بھی موجود ہے اور ان احادیث کی صورت میں بھی موجود ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں دعوت کے ضمن میں جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر بالاجمال کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہر وہ بات جو انہوں نے اپنے معاشرے کو کہی ہر وہ پیغام جو انہوں نے اپنی سوسائٹی کو پہنچایا ہر وہ اسلوب جو انہوں نے بات کہنے کے لیے اختیار کیا وہ ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کی وجہ سے اور ہمیں یہ حیثیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بعض معاملات میں قطعی طور پر فرق واقع ہو گیا ہے اور بعض معاملات میں ہم طابقاً نال بالنال ان کی اتباع کے پابند ہیں اس لیے اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کے وہ پہلو بیان کروں کہ جن میں ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس دعوت کو لے کر اٹھے اس کو پیغمبر ہی کی پیروی کرنی چاہیے میں ان چیزوں پر پہلے متنبہ کر دینا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کی روشنی میں اب کسی شخص کو اختیار نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اگرچہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں لیکن قرآن مجید سے اور پیغمبر کی اپنی ہدایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کی وجہ سے انہی کے ساتھ خاص تھی سب سے پہلی چیز جس کو بہت اچھی طرح سے اب اس زمین پر ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کی دعوت کا کام لے کے اٹھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ حق رکھتے تھے کہ وہ اپنی دعوت کے ایک ایک جزء کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہی حق ہے اس میں ادنا درجے میں بھی کسی باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے یہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے اور بے شک یہ حق رکھتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ انی علی بینۃ من ربی میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت لے کر آیا ہوں اس میں کوئی شائبہ گمان بھی نہیں ہے میں نے حقیقت کو تم پر واضح کر دیا ہے اور اب ہر وہ شخص جو اس حقیقت کے معاملے میں کوئی منفی رویہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے اس طرز عمل کا جواب سوچتے ہیں یہ حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا लेकिन ये हक अब इस जमीन के ऊपर किसी शख्स को हासिल नहीं रहा। जाहिर बात है कि यहां जो दावत जेरे बहस है, ये दावत वो है कि जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इस उम्मत के उलमा को लेकर उठनी है, उन लोगों को लेकर उठनी है जिनको अल्लाह दीन का फहम देता है, उन लोगों को लेकर उठनी है कि जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस कौम की, इस मिल्लत की इस्लाह पर मामूर है। जब उन लोगों को यह दावत लेकर उठनी है तो उनको यह जान लेना चाहिए कि उनमें और पैगंबर में एक फर्क वाक़े हो गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चूंकि वही नाजिल होती थी, वो नबूवत के मनसब पर फायज थे और उनका ये मकाम कुरान में बयान किया गया है कि जो दीन उनको दिया गया उसके बाब में ये हिदायत कर दी गई कि अल्लाह के फरिश्ते चारों तरफ से निगरानी करते रहें कि कहीं अदना दर्जे का भी कोई इन्हराफ ना हो, और अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो उसकी फौरन इस्लाह कर दी गई। ये हैसियत जाहिर बात है कि अब यहां किसी को हासिल नहीं। अब हम क्या करते हैं? हम कुरान मजीद का इलम हासिल करते हैं, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इलम हासिल करते हैं, हम जो कुछ उनसे साबित है उसको जानते हैं। जाहिर है कि ये जानने के जितने भी ज़राए हमारे पास हैं इनमें हमें तहकीक और तदकीक में गलतियां भी लग सकती हैं। ये हो सकता है कि हम एक बात को समझने में अपनी तरफ से पूरे इखलास के साथ जिद्दोजहद करें लेकिन सही नतीजे तक न पहुंच सकें। चुनाचे हमारे लिए अब यही मौजू है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर दावत देते हुए हम ये कहें कि ये बात हमने अल्लाह की किताब कुरान मजीद से, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जान ली है, हमने दलील की बुनियाद पर इसको समझा है, हम ये बात दलील की बुनियाद पर समझा सकते हैं, हमारी तहकीक के मुताबिक ये हक है, अगर इसमें कोई गलती है तो हम उसकी इस्लाह करने के लिए तैयार हैं और हम इस बात को मानते हैं कि हमारी किसी बात में गलती हो सकती है। ये फर्क सबसे पहले मलहूज रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत पेश की उसमें जितनी बड़ी हैसियत दावत को हासिल है, यानी उसमें जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, जो नजरिया बयान किया गया है, उतनी ही बड़ी हैसियत खुद शख्स पैगंबर को भी हासिल है। यानी पैगंबर जब दुनिया के सामने आकर दावत देता है तो वो ये कहता है कि ओ बदुल्लाह वातियू, अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत करो। वो एक शख्स की हैसियत से भी यूं समझ लीजिए कि जमीन पर खुदा की हुज्जत होता है, हक व बातिल का मेयार होता है। ये हैसियत उसको हासिल है और ये हैसियत उसको खुद आलम के परवरदिगार ने दी है कि वो लोगों से अपनी गैर मशरूत इताअत का मुतालबा करे। चुनाचे उसके बारे में ये उसूली कानून कुरान में बयान किया गया है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, जो पैगंबर भी इस जमीन पर भेजा गया है वो अल्लाह के इज़्न से इसलिए भेजा गया है कि लोग उसकी इताअत करें। और ये बता दिया गया है कि अगर पैगंबर किसी मामले में कोई फैसला कर दें, कोई हुक्म दे दें, तो आदमी को अपने दिल में तंगी महसूस किए बगैर उसके सामने सर झुका देना है। और ये बता दिया गया है कि जो कुछ वो परवरदिगार की तरफ से पेश करें उसके बारे में कोई बहस व निज़ा नहीं हो सकती। चनाचे ये वाकया है कि जब कभी भी सहाबाए कराम को ये तारीख से मालूम होता है, हदीस से भी मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के बारे में कोई इश्काल पेश आ जाता था तो वो पहले ये पूछते थे कि आप ये अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं या ये आपकी अपनी राय है। और ये बात वाजे हो जाने के बाद कि ये अल्लाह का हुक्म है, फिर उसके सामने सर झुका दिया जाता था। पैगम्बर की ये हैसियत कि वो जो बात भी बयान करता है और जो कुछ भी कहता है और जिस तरीके से अपनी दावत को पेश करता है उसके साथ वो खुद भी मुता है, उसकी अपनी इताअत भी लाजिम है, और इस एतबार से वो उस पूरी दावत के अंदर एक ऐसी शख्सियत बन जाता है कि लोग उस सारी बातें मान लें लेकिन उसको न माने तो तब भी वो ईमान के दायरे में शामिल करार नहीं पाते। कुरान में जगह जगह ये बयान हुआ है कि यहूद ने बहुत इसरार के साथ ये कहा कि जिन चीजों को मनवाना पेश नजर है वो तो हम मानते ही हैं, हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर भी ईमान रखते हैं, जिन नेकियों की आप तालीम दे रहे हैं उनको भी मानते हैं, लेकिन ये क्यों इसरार किया जा रहा है कि हमसे ये शख्सियत भी मनवाई जाए? ये जगह जगह बयान हुआ है, उन पर वाजे कर दिया गया कि हक व बातिल का मेयार ये शख्सियत है। इसलिए जिस तरह इसकी बात मानना जरूरी है उसी तरह इसकी ये हैसियत मानना भी जरूरी है। इसकी ये हैसियत अल्लाह ताला के नुमाइंदे की हैसियत है। یہ حیثیت اس کو خود پروردگار نے دی ہے، لہذا اگر تم اس کی بات مان لیتے ہو لیکن اس کی اس حیثیت کا انکار کرتے ہو تو تم اللہ کی ہدایت پر نہیں. یہ مقام بھی ہم میں سے اب کسی کو حاصل نہیں. یعنی ہم جو دعوت لے کر اٹھیں گے، ظاہر بات ہے کہ اس میں پہلے ہی مرحلے پر یہ بات واضح کر دیں گے کہ ہم انسان ہیں، انسان کی حیثیت سے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں. ہم کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کریں. ہم کو لوگوں پر یہ بات واضح کرنی ہے کہ وہ جب ایمان لے آئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی طرف سے مامور ہیں انسانوں کی ہدایت پر، تو ان کو جس طرح ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، جس طرح ان کی اتباع کرنی ہے، اسی طرح ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دعوت میں پیغمبر کی اطاعت کی دعوت تو ایک لازمی جز کی حیثیت سے شامل ہے، لیکن ہماری اپنی شخصیت اس دعوت کا مرجع نہیں ہے. ہم کو جو کچھ بیان کرنا ہے اس میں صاف صاف یہ بات واضح کر دینی ہے کہ ہم حق بتانے والے ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، سما کا تعلق ہے، یہ کہ لوگ یہ بات سنیں اور یہ کہیں کہ سمعنا و اطعنا، یہ پیغمبر ہی کو انہیں کہنا چاہیے. اب پیغمبر کی بات بتا دی جائے گی تو بے شک ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ سمعت و اطعت، میں نے سنا، میں نے مان لیا. لیکن کسی اور شخص کا یہ کام نہیں ہے. یہ بات قرآن مجید نے بہت اچھی طرح سے واضح کر دی. اسی طرح سے ایک تیسری بات جو پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ زمین کے اوپر اللہ تعالی کے دین کا آخری نمونہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی دین کو پڑھے اور اس کو دیکھے تو کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، وہ جس قرآن کی دعوت لے کر اٹھے ہیں ان کی شخصیت بھی اس کا نمونہ ہے. اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ کتاب میں اور شخص میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ادنا انحراف ہے، یعنی کتاب جو کچھ بیان کرتی ہے شخص اس کا بہترین نمونہ بن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. شخص کو دیکھ لیجئے، کتاب کو پڑھ لیجئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. کسی ادنا درجے کے فرق کی بھی نشاندہی کرنی ممکن نہیں ہوتی. لہذا جو راہ پیغمبر بتاتا ہے وہ راہ اللہ کی راہ قرار پا جاتی ہے، اور جو راستہ وہ بتاتا ہے اس راستے کے بارے میں کوئی شائبہ گمان بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. تو وہ لوگوں کو کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ من انصاری اللہ، اللہ کی اس راہ کی طرف کون میرا مددگار بنتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ زمین پر چونکہ حق کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کا دست و بازو بننا، اس کی نصرت کرنا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ ساری چیزیں ایک حق کی حیثیت سے لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ من انصاری اللہ، اور اللہ نے یہ قرار دے دیا کہ یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کی نصرت ہے. پیغمبر کی نصرت اللہ کی نصرت، پیغمبر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب یہ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے تو تمہاری بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ ہماری بیعت کر رہے تھے. تو یہ حیثیت پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے. اب جس طرح اطاعت پیغمبر کا حق ہے، اسی طرح نصرت بھی پیغمبر کا حق ہے. ہم اس وقت زمین کے اوپر کھڑے ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں پیغمبر کی نصرت کرو، پیغمبر کی نصرت گویا ان کے دین کی نصرت، یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حق ہم کو حاصل نہیں رہا کیونکہ ہم اور دین دونوں مترادف نہیں ہیں. پیغمبر اور دین دونوں مترادف ہیں. وہ جب یہ کہتے تھے کہ کون دین کا مددگار ہے، تو وہ اگر اس کے بجائے یہ کہہ دیں کہ کون میرا مددگار ہے تو ان کو یہ کہنے کا حق تھا، لیکن یہ حق اب ہم کو حاصل نہیں. ہم کو تو یہ کہنا کون دین کا مددگار ہے، کون آدمی اللہ کے پیغام کی نصرت کے لیے اٹھتا ہے، یہ بات کہنا. اس سے زائد ہم کو کوئی حق اس معاملے میں بھی حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی پیغمبر کی دعوت کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد چند چیزوں کا فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ اس بات کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب وہ مہلت ختم ہو گئی ہے جو اس زمین پر اس قوم کو حاصل تھی. وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب ہم اس پوری قوم سے برات ظاہر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب یہ قوم شرک اور کفر سے آگے بڑھ کر کافر اور مشرق قرار پا گئی ہے. وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ان الفاظ میں سنا دیتے ہیں کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ کہہ دیتے ہیں. यानी यूं समझ लीजिए कि इन्नी ब्राउन मिनको, मैं तुमसे बरी हो गया, ये कहकर वो अपनी कौम को छोड़ देते हैं। उनका कौम को छोड़ देना ये यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इस बात का ऐलान होता है कि अब इस कौम में कोई ईमान की रमक बाकी नहीं रह गई। ये बरात जाहिर करना, ये कौम को छोड़ देना, ये वो भी कब छोड़ते हैं? अपने इज्तिहाद से नहीं छोड़ते, बल्कि कुरान से मालूम होता है कि अल्लाह ताला खुद बताते हैं वही के जरिए से कि वो वक्त आ गया है कि अब इस कौम में कोई जान बाकी नहीं रही, इस दूध को अच्छी तरह बिलो लिया गया, अब ये छाछ ही छाछ है, इसमें मक्खन बाकी नहीं रहा है, जितना निकालना था वो निकाल लिया, दो निकले हैं चार निकले हैं, जितने भी निकले हैं। तो वो ये कहते हैं एक खास वक्त के बाद, हर पैगम्बर ने कहा है, अल्लाह के हर रसूल ने कहा है, ये एक खास वक्त आ गया है जिसके बाद उन्होंने अपनी कौम को छोड़ दिया है, उनसे बरात की है, और बरात का लाजमी नतीजा यह है कि उन्होंने फिर हिजरत की है। ये हिजरत और ये बरात ये पैगंबर ही के साथ खास है, हम में से कोई भी अब ये मकाम नहीं रखता कि वो किसी मौके के ऊपर अपनी कौम के बारे में ये फैसला सुना दे कि अब इसके ऊपर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो गई है, मैं इसको छोड़कर जा रहा हूं। ये फैसला करने का कोई जरिया ही हमारे पास बाकी नहीं, और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पैगंबर के पास भी क्योंकि उसको वही आती है तो ये जरिया होता है, वरना उसके पास भी कोई जरिया नहीं। ये कोई इज्तिहाद का मसला ही नहीं, ये जान लेना। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल अर्ज करूं कि हुदैबिया के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को यह बहुत ख्याल था कि हमें इस मौके पर हमला कर देना चाहिए। कुरान मजीद ने यह कहा कि हम रोक रहे हैं, इस वक्त वापस चले जाइए, जो मुआहदा हो रहा है वो बेशक दबकर हो रहा है लेकिन वापस चले जाइए। अब कुरान मजीद ने उस मुआहदे और वहां वापस भेज देने की वजह बयान की है सूरह फतह में, और वजह यह बयान की है कि ये हम जानते थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हम जानते थे कि इस वक्त उम्मुल कुरा में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अंदर से ईमान ला चुके हैं लेकिन अभी उन्होंने ईमान का इजहार नहीं किया है, तो अगर तुम इस वक्त हमला कर देते तो वो तुम्हारे पांव तले लौंदे जाते। ये बात ना पैगंबर जान सकते थे ना उनके बाद कोई और जान सकता है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको बता दी तो ये जानना मुमकिन हो गया। अब जाहिर बात है कि बरात जाहिर कर देना, ये कह देना कि आज 10 साल 12 साल के बाद पाकिस्तान की पूरी कौम पर हमने हुज्जत पूरी कर दी है, अब इस कौम के अंदर कोई ईमान की रमक बाकी नहीं रही, दावत का मरहला खत्म हो गया है, हमने जो कहना था कह दिया है, हमारी तरफ से इस पर हुज्जत पूरी हो गई, अब हम इस कौम से बरात का इजहार करते हैं, हम इसको छोड़कर जा रहे हैं, ये अब हिजरत का मौका आ गया है। ये पैगंबर ने भी उस वक्त कहा है जब आसमान की वही आई, और ये इतना नाजुक मौका होता है, इतना नाजुक मौका होता है कि ये अंदाजा कर लीजिए कि अल्लाह के एक पैगंबर ने, हजरत यूनस अलैहि सलाम ने वक्त से पहले ये फैसला कर लिया, यानी उन्होंने वही का इंतजार नहीं किया, अपने इज्तिहाद से फैसला कर लिया और आ गए बिल्कुल जज्बात में। उन्होंने ये ख्याल किया कि मैंने इस कौम को बहुत बुला लिया है, किसी पहलू से भी अब ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, वो उठे उठ के चले गए। कुरान मजीद में बड़ी शान से उनका वाकया जेरे बहस आया है कि अल्लाह ताला ने उनको भागा हुआ गुलाम करार दे दिया। आबे का लफ्ज उनके बारे में इस्तेमाल हुआ है, यानी वो गुलाम जो अपने आका की सल्तनत को छोड़ के भाग निकले, और उसके बाद ये कहा है कि अगर वो अपनी इस गलती से तायब ना हो जाते और हमारी तरफ ना लौटते और तस्बीह करके और अपने गुनाह का एतराफ करके बार बार हमारी तरफ रजू ना करते तो फिर हमेशा हमेशा के लिए मछली के पेट में पड़े रहते। अल्लाह ताला ने यह फरमाया, और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब ये मरहला आया है तो उनको खिताब करके कहा कि ला तकुन का साहिबिल हूत वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, अपने रब के फैसले का इंतजार करो, उस मछली वाले की तरह जल्दी में मुबतला ना हो जाओ। हमारे पास क्या जरिया है ये जानने का कि अब बात वाजे हो गई, क्या जरिया है ये जानने का कि अब पूरी कौम के दिल में हम उतर गए हैं, क्या जरिया है ये जानने का कि पूरी की पूरी कौम ने सोच समझ कर हमारी दावत का इनकार कर दिया है। इनमें से कोई जरिया भी हमारे पास नहीं है। जब इनमें से कोई जरिया नहीं है तो हमारी दावत में अब इस तरह का कोई मरहला नहीं आ सकता जो अल्लाह के पैगम्बर की दावत में आ गया था कि वो खड़ा होकर ये कहे कि इन्नी बराउम मिनकुम, मैं तुम सबसे बरी हूं, मैं जा रहा हूं। इसका कोई इसी तरह ये बात भी जान लीजिए कि पैगंबर जब हिजरत कर लेता है, हिजरत करने के बाद अगर अल्लाह ताला उसको किसी खित्ता अर्ज में तमक्कुन दे दे, यानी उसको इक्तदार हासिल हो जाए, तो वो जिहाद करता है। चुनाचे ये सुन्नत पैगंबर ने कायम कर दी है कि उन्होंने जिहाद किया जब वो मदीने में चले गए और वहां उनको इक्तदार हासिल हो गया, और ये जिहाद अब इस उम्मत को बहसियत उम्मत मुंतकिल हो गया है। ये जब अपने निजाम रियासत को दीन के ताबे कर लेगी तो इस पर भी वो जिहाद फर्ज हो जाएगा, लेकिन इस जिहाद की जिम्मेदारी अफराद पर आयद नहीं होती। यानी अब किसी शख्स का ये काम नहीं है कि वो कुछ देर के बाद दावत दे, उसके बाद कुछ लोगों को तरबियत देने के बाद अपना एक जथा तैयार करें और कहे कि अब जिहाद का मरहला आ गया, अब हमको पिल पड़ना चाहिए। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जिस तरह किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है, अगरचे ये बात कुरान में लिखी हुई है, लेकिन किसी शख्स को हक हासिल नहीं है कि वो किसी आदमी को जानी करार देकर उसके पास शहादतें भी मौजूद हों तो कोड़े मार दे। यह हक सिर्फ रियासत को हासिल है। ये हक किसी शख्स को हासिल नहीं है कि वो किसी आदमी को चोर करार देकर उसका हाथ काट दे अगरचे सारे सबूत उसके पास मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह जिहाद का हक भी इस्लामी रियासत को हासिल है, दावत की किसी तंजीम को हासिल नहीं। ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। यह होता है कि आदमी जब इस राह पर उठता है तो वो फौरन ही यह ख्याल करना शुरू कर देता है कि अब बस इतनी मोहलत बाकी रह गई है कि अगर मेरे हाथ में ऐसा हो तो मैं इन सबको सीधा कर दूंगा। और हमारे इकबाल फरमा भी चुके हैं कि ऐसा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। तो आदमी कहता है कि आखिर बेबुनियाद कलीमी करने का क्या फायदा, मैं तलवार उठाता हूं और उठाकर जिहाद कर डालता हूं। इस जिहाद के लिए बाद औकात ये भी होता है कि खुफिया तंजीमें वजूद में आ जाती हैं, जेर जमीन काम वजूद में आ जाते हैं। लेकिन ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जिहाद का ताल्लुक रियासत से है, जिहाद का ताल्लुक रियासत से है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चोर का हाथ काटने का ताल्लुक रियासत से है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जानी को कोड़े मारने का ताल्लुक रियासत से है और दूसरी तमाम हदूद का ताल्लुक रियासत से है, इसी तरह जिहाद का ताल्लुक भी रियासत से है। ये मेरा, किसी फर्द का, किसी दाई का, किसी आलिम का, किसी ऐसी जमात का, 10, 20, 50, 100, 2000 आदमी मिल गए, ये उनका काम नहीं। ये वो चीजें हैं कि जिनके बारे में अच्छी तरह मतनब्बे हो जाना चाहिए। और इन पर मतनब्बे हो जाने के बाद अब ये देखना चाहिए कि ये काम तो हमारे करने के नहीं है, इसलिए इनको तो या पैगंबर के लिए छोड़िए या इस्लामी रियासत के लिए छोड़िए। हमारे करने का काम क्या है और उस काम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका इख्तियार फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत पेश की है इन चीजों पर मतनब्बे रहते हुए, जिनकी तरफ मैंने इब्तिदा में इशारा कर दिया, जो दावत पेश की है इन चीजों को अगर निकाल लीजिए तो बाकी हर मामले में हमारे लिए वो बेहतरीन नमूना है। यानी कुरान मजीद ने क्योंकि पैगंबर की दावत को वही चीज करार दे दिया है जो उलमा की दावत है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए कुरान मजीद में इंजार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद ये कहता है कि पैगंबर की असली जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को खबरदार करे। इसके लिए जो इस्तलाह इस्तेमाल की गई है वो इंजार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजीरन लिल आलमीन यानी तमाम इंसानों के लिए इंजार करने वाला बनाकर भेजा गया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म भी दिया गया कि ए ओल्ड लपेट कर बैठने वाले, कुम फानजिर, उठो और इंजार करो। वह यूं समझ लीजिए कि इंजार ये पैगंबर का दावत का मिनहाज। पैगंबर दुनिया के अंदर जो दावत पेश करते हैं उसके लिए कुरान मजीद की इस्तलाह इंजार है। बैने ही यही इस्तलाह अहले इलम के लिए इस्तेमाल हुई है। यानी कुरान मजीद ये फरमाता है कि मा कानल मोमिनून अलियन फिरू काफा, सारे मुसलमान तो ये काम नहीं कर सकते। फलौला नफरा मिन कुल्ले फिरकते मिन हम ताइफा, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मुसलमानों की हर जमात में से कुछ लोग निकलें जिनको अल्लाह ताला इसका शौक दे, इसकी सलाहियत दे, ले ये तफक्कहू फिद दीन, वो दीन में बसीरत पैदा करें, दीन का इल्म हासिल करें, अंधे राह दिखाने वाले बनकर न उठें, बल्कि वो दीन जो पैगंबर ने पेश किया है उसकी सही बसीरत हासिल कर लें। उसके बाद क्या करें, वले युनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, उसके बाद वो अपनी कौम को इंतजार करें। तो इंतजार के लफ्ज़ से कुरान मजीद ने यह बता दिया कि वो सारी चीजें जिनकी तरफ मैंने इशारा कर दिया है वो तो कोई शख्स अब जमीन के ऊपर उलमा में से, दीन की दावत देने वालों में से नहीं इख्तियार कर सकता, वो पैगंबर के साथ खत्म हो गई और जो रह गई हैं वो रियासत के वजूद पर मुअल्लक है। अलबत्ता बाकी तमाम चीजें लफ्ज इंतजार के इस्तेमाल होने की वजह से हमारे लिए भी वैसे ही हैं जैसे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। उसमें सबसे पहली चीज जिसको हर उस शख्स को जो दीन की दावत का काम करने के लिए उठे इख्तियार करना चाहिए और हर उस दावत को इख्तियार करना चाहिए कि जो इस मकसद के लिए अपने आप को मुनज्जम करे, वो ये है कि उसमें ऐसी शख्सियात होनी चाहिए, ऐसी शख्सियात होनी चाहिए कि जो दीन की दावत का मर्जा बन सके। अब ये तो नहीं है कि कोई शख्स दीन का मेयार है, लेकिन बहरहाल दीन को जानने वाले, दीन का सही फहम रखने वाले, दीन की बसीरत रखने वाले, दीन का इल्म रखने वाले लोग ही हैं कि जिनको ये काम करने के लिए उठना चाहिए। ये कि आदमी के अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि चलिए मैं भी उठ खड़ा होता हूं और उसके बाद वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज में अंधा राह दिखाने वाला बनकर उठ खड़ा हुआ, तो इसका बड़ा शदीद अंदेशा होता है कि वो कौम को किसी अंधे गड़े में जाकर डाल दे। ये जरूरी है। ये तो है इसका ये पहलू कि इस तरह के लोगों के बगैर अगर लोग उठेंगे, यानी ये बात यहां मैं अर्ज कर दूं कि जो आम दावत का काम है, आपने अपने भाई को बेटे को कोई नेकी की बात बता दी, मोहल्ले में किसी को तलकीन कर दी, ये एक दूसरी चीज है, लेकिन अपनी कौम के लिए अगर आप दावत लेके उठते हैं तो इसके लिए ये जरूरी है कि वही लोग उठें जो लोग दीन की बसीरत रखते हों, दीन का फहम रखते हों, वो बीना हों, उनकी आंखें खुली हों, वो जानते हों दीन क्या है, वो बता सकें दीन क्या है। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही बेइल्म किस्म के और जाहिल किस्म के लोग हों और दीन की ऐसी सूरत पेश कर दें कि जो बिल्कुल दीन के चेहरे को मस्क करके रख दें। दीन के अंदर अच्छी बसीरत रखने वाले लोगों को ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये बहरहाल इंसानी फितरत है, इस इंसानी फितरत को अल्लाह ने भी मलहूज रखा है कि इंसान मुजर्रदात में नहीं जीता, यानी एक किताब लिख दी आपने, एक चीज पढ़ दी आपने, इंसान का ताल्लुक शख्सियतों से होता है। इस वजह से यहां इस तरह के लोगों को दीन की बसीरत होनी चाहिए, वहां इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये इंसानी हद तक दीन का नमूना बन के सोसाइटी के अंदर मौजूद रहे। दीन का नमूना बन के सोसाइटी के अंदर जब इस तरह के लोग मौजूद रहते हैं तो दर हकीकत ये इनकी जात है जो लोगों की दीन की तरफ मतवज्जे करने का बायस बनती है। यानी ये जात वो जात तो नहीं होती जो पैगंबर की जात है, लेकिन बहरहाल इतना उस्वा इसके लिए भी बाकी रहता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी सीरत को, जिनके किरदार को, दीन के जात, जिनके ताल्लुक को, जिनकी जिंदगी को देख के लोग दीन की तरफ रुजू करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको हमारी तारीख में असहाब अजीमत कहा जाता है। हमारी तारीख में ये एक इस्तलाह आम हो गई है और बड़ी उम्दा इस्तलाह है, यानी ये उस सारी चीज को बयान करती है। अब इसकी चंद बातें जान लीजिए। कुछ खुदा के बंदे जिनको अल्लाह ताला ये तौफीक देते हैं कि वो दीन का इल्म हासिल कर लें, ये जान लें कि दीन में क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और अच्छी तरह जान लेने के बाद वो फिर अपनी जिंदगी को उस सांचे में ढालें और इसके साथ ही इस बात का एहतमाम करें कि वो लोगों के लिए दीन की दावत का ऐसा नमूना बन सकें कि लोग उनकी जानिब फिलवा के मतवज्जे हों और उनसे दीन सीखें। ये चीज करने के लिए एक बुनियादी बात और उसूली बात यह भी जान लीजिए कि इस तरह के लोगों के मामले में जो आम मुसलमानों के लिए कानून है उसकी निस्बत चंद चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। एक आम मुसलमान को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो तवाजुन कायम रखना पड़ता है बीवी बच्चों के साथ अज्जा अकरबा के साथ, वो तवाजुन आम आदमी की हैसियत से वो इख्तियार कर लेता है। लेकिन ये लोग जो इस दावत को लेकर उठते हैं ये अपने आप को गोया यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल नजर कर देते हैं अपने परवरदिगार की। हमारे यहां इसके लिए इस्तलाह इस्तेमाल होती है कि मैंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया, यानी दीन ही इनका ओढ़ना बिछोना बन जाता है। जब दीन ही इनका ओढ़ना बिछोना बन जाता है तो इनके खानदान से मुतल्लक भी चंद चीजें हैं जो खुद कुरान ने वाजे कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना के वाजे कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह बिल्कुल मुमकिन था कि वो माशी जिद्दोजहद करते, अपने घर वालों के लिए अच्छे से अच्छे हालात फराहम करते और उनके घर वालों का भी आम आदमी की हैसियत से यह हक था कि उनसे ये मुतालबा करते, लेकिन वक्त देने के पहलू से, आम जरूरतों को पूरा करने के पहलू से, जब घर वालों के कुछ मुतालबात बस यूं ही मुतालबे की सूरत में नहीं सामने आए हैं तो कुरान ने उस पर गुफ्तगू की है और साफ साफ अल्फाज में चंद बातें वाजे कर दी। पहली बात यह वाजे कर दी है कि जो घर वाले हैं वो ये जान लें कि वो किसके घर वाले हैं, ये उनको जान लेना चाहिए और अच्छी तरह जान लेना चाहिए। मसला आम आदमी का नहीं है, जिस तरह इस्लाम का कानून आम आदमी के लिए और हुक्मरान के लिए मुख्तलिफ है, इसी तरह इस्लाम का कानून आम आदमी के लिए और दीन के दाई के लिए भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो इख्तलाफ बड़ी हिकमत पर मबनी है। इसके खानदान वालों को यह जान लेना चाहिए कि जो एक आम आदमी के साथ मुतालबात है, वो दफ्तर में जाता है, मंडी में बैठता है, उसकी मसरूफियात की नौयत ही दो है, उसको बहरहाल वहां जाना है, कुछ माश की जिद्दोजहद करनी है और थोड़ा बहुत दीन की खिदमत का काम अपने तरीके पर कर लेना है। लेकिन ये आदमी तो इस मकाम पर खड़ा हो गया आके कि इसको एक पूरी की पूरी मिल्लत को दीन बताना है। जब ये पूरी की पूरी मिल्लत को दीन बताने के लिए खड़ा हुआ है तो ये नामुमकिन है कि इससे वो माशी और वो माशरती तकाजे किए जाएं जो तकाजे एक आम आदमी से किए जाते हैं। तो कुरान मजीद ने साफ अल्फाज में ये कह दिया उम्महातुल मोमिनीन को खिताब करके, यानी जो घर में मौजूद हैं, कि आप अगर ये चाहती हैं कि आपके लिए वो सब कुछ फराहम हो जो दुनिया के अंदर हर औरत का हक है, बीवी बच्चों का हक है, खानदान वालों का हक है, तो आप किसी और घर का इंतखाब कर लें। यानी ये नहीं कहा कि आपकी इस ख्वाहिश जायज ख्वाहिश है, कोई नाजायज ख्वाहिश नहीं है, इसके लिए हम ये एहतमाम कर दिए, साफ साफ ये कह दिया कि इसके लिए हम इजाजत देते हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से रुख्सत कर दिया जाएगा, आप जाइए और जाकर कोई और घर आबाद कर लीजिए। अगर इस घर में रहना है तो ये जान लीजिए कि दीन की दावत का मरकज है। इसमें अगर कुछ लिया जा रहा है, यानी माशी बाशरती तौर पर कुछ चीजें ली जा रही हैं जो आम घरों को मयसर हैं, तो ये एजाज और शर्फ दिया भी जा रहा है कि आप इस घर की ख्वातीन। इसलिए ये जरूरी है कि ये कुछ देकर कुछ लेकर आप अपने इस मनसब को पहचानिए। ये इस वक्त जिस मनसब के ऊपर फायज है उसके लिहाज से इनको जिंदगी बसर करनी है। इनके पास लोगों को भी आना है, इनको लोगों को बुलाना भी है, इनको अहबाब को वक्त भी देना है, इनको लोगों की तरबियत भी करनी है। और इनके यहां ये कायदा बहरहाल लागू होगा कि इन पर जिम्मेदारी पहले इनके साथियों की है, बाद में घर वालों की है। इसको खुद हुजूर ने एक मौके पर वाजे कर दिया, जब साहिबजादी ने आकर ये कहा कि मुझे कुछ इस तरह की मुश्किलात दरपेश है, तो मेरी इन मुश्किलात के लिए आप मदद कर सकते हैं कीजिए, तो यह फरमाया कि मेरे पास जो कुछ है उसके पहले अकदार यह साबे सुफा है, ये जो बाहर बैठे हुए, इसलिए मेरी इस तरजीह को तो खत्म नहीं किया जा सकता। इनसे कुछ बचेगा तो तुम मेरे पास लेने के लिए आ जाओ। इस उसूल को पैगंबर ने अपनी सुन्नत से भी वाजे किया है, और ये उसूल कुरान मजीद की एक पूरी सूरा का मौजू है। उसमें यह बात बता दी गई है कि जो लोग भी इस काम को लेकर उठें वो भी ये जान लें कि उनको इस काम के लिए किस तरह अपने दिन रात लगा देने हैं, और उनके घर वाले भी ये जान लें कि वो अब किन के घर वाले, ये बात जान लेनी चाहिए। अब जाहिर है कि एक तरफ पैगंबर जब दावत के लिए खड़े होते हैं और पैगंबर की इत्तबा में जब अल्लाह के बंदे खड़े होते हैं तो वो ये इशार करते हैं, दूसरी जानिब अब इस इशार का ये मतलब नहीं है कि जो लोग उनके मुखातब हैं वो ये कहें कि अब इनसे हर इशारी का मुतालबा होना चाहिए। चुनाचे उन्हीं सूरतों में उनको भी खिताब करके बाद हिदायत दी गई, और वो दावत का बड़ा अहम बाब है जो कुरान में बयान हुआ है। उनको ये बताया गया है कि अब इस घर को अपना मोहतरम घर समझिए, ये जान लीजिए कि इस घर से तुमको दीन मिलना है, इस घर से मुतल्लक हर शख्स हसास है, इसका अंदेशा है कि कोई भी मुनाफिक स्कैंडल बना देगा, इसलिए घर में कोई चीज लेनी है, जाना है, पकड़ना है, देखना है, तो इसकी इज्जत की हिफाजत कीजिए। एक पूरा का पूरा बाब खोल दिया गया है कि जिसमें हिदायत दी गई है कि अब इस घर के मामले में तुमको ये रवैया अख्तियार करना है। और इसी तरह जाहिर बात है कि जो इस तरह की शख्सियत होती है तो उसका भी तो एक करीबी हल्का होता है, दोस्त अहबाब ताल्लुक रखने वाले, वो बाज औकात बराबरी के ताल्लुकात का मुतालबा करते हैं कि हम आ जाते हैं इनको भी तो आखिर आना चाहिए, हम अगर हाजिर हुए थे तो इनको भी तो कुछ वक्त निकालना चाहिए, अगर हम गपशप अपने यहां कर लेते हैं बैठ के तो इनके यहां भी हो जानी चाहिए। कुरान मजीद ने यह बता दिया कि यह मुतालबा रफका का सही नहीं है, अहबाब का सही नहीं है, ये किस किस से ताल्लुक रखें और किस किस के लिए मामला करें। चुनाचे उनको कहा गया कि आइए बात पूछिए बैठिए, लेकिन यह भी ख्याल रखिए कि इनको आराम भी करना है, ये भी ख्याल रखिए कि इनको जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, ये ना कीजिए कि आ गए हैं तो उसके बाद अब खाना खा के ही जाएंगे। कुरान मजीद ने ये सब बातें बयान की और ये बता दिया कि जिस तरह इनको अपनी जिंदगी को आम आदमी की जिंदगी पर क्यास नहीं करना, इसी तरह इनके साथियों और इनके अहबाब को भी इनकी जिंदगी को आम आदमी की जिंदगी पर क्यास नहीं करना चाहिए, और इनसे वो मुतालबात नहीं करने चाहिए जो मुतालबात कोई शख्स अपने किसी दोस्त से ताल्लुक वाले से कर लेता है। हजार आदमी आएंगे इनको मिल जाएंगे आकर, लेकिन वो हजार आदमी अगर ये मुतालबा करें कि ये भी तीमारदारी में और फला में उसी तरीके से जाएं, जाएंगे, इनको ये एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का, लेकिन ये चीज गिले का मौजू नहीं बननी चाहिए, शिकायत का मौजू नहीं बननी चाहिए। इस उसूल को भी कुरान मजीद ने बिल्कुल साफ तरीके पर वाज़ेह किया। ये तो कोई आदमी समझ लीजिए कि उस शख्सियत के बारे में या उन शख्सियात के बारे में या उन अशखास के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के तरीके की हिदायत है कि जो लोग वाबस्ता हों वो इन चीजों का ख्याल रखें, जो लोग इस काम को लेकर उठें वो आम कानून का अपने ऊपर इतलाक ना करें। यानी दोनों जानिब खिताब किया गया है, लोग उनका ख्याल रखें और वो लोगों का ख्याल रखें, वो इशार करें जिस हद तक उनको किया जा सकता है और लोग कम से कम उनका इशार कबूल करें, दोनों तरफ, ताकि एक उम्दा तवाजुन इसके नतीजे में पैदा हो जाए। इसके बाद दूसरी बात जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके दावत से वाजे होती है वो ये है कि दावत के काम के मौके के ऊपर जिस कौम में भी आप ये काम कर रहे हैं उसको अपनी कौम कहिए। उसमें काम की पता यहां से नहीं होगी कि एक फरिश्तम तरतीब दे लेंगे और उसके बाद एक थानेदार साहब जाएंगे बस्तालिफ बस्ता वे की कापियां पकड़कर और वो ये कहें कि अच्छा इनके अकायद में क्या क्या नक्श जरा नोट फरमाओ, इनके अमाल में क्या क्या खराबी है जरा फरिश्त तरतीब दो। ये पैगंबरों का तरीका नहीं। पैगंबर अपनी कौम को वह बदतरीन जहालतों में मुबतला हो, अकीदे की जहालतें, ईमान की जहालतें, अमल की जहालतें, उनको या कौम कह खिताब कर, है मेरी कौम के लोगों, और अल्लाह ताला उनको उस कौम का भाई करार देता है। कुरान मजीद को पढ़ लीजिए, भाई करार देता है, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी कौम के लोगों, ये कहकर पैगंबर खिताब कर, ए काफिरों, ए मुशरिकों, ये कह के पैगंबर खिताब कर, ये उनका तरीका नहीं होता। अब उसके बाद दूसरी चीज जो इस जमन में सामने आती है वो ये है कि जब वो अपनी कौम को खिताब करते हैं तो कौम को खिताब करते वक्त इसका पूरा लिहाज रखते हैं कि उनके खिताब का असल रुख कौम के कारफरमा तबकों की तरफ रहे, यानी वो तबके जिनको माशरे में असर रसूख हासिल है। इलम के लिहाज से भी असर रसूख हासिल होता है, दौलत व इकतदार के लिहाज से भी असर रसूख हासिल होता है। पैगम्बर अपनी दावत का रुख उधर रखते हैं, ये बात उनको अल्लाह ताला ने खुद हिदायत करके बता दी। यानी क्यों? इसलिए वो ये रुख रखते हैं कि यही तबकात होते हैं जिनका सोसाइटी में गैर मामूली असर होता है, यही लोग होते हैं कि जिनको देखकर लोग अपने रवैये तब्दील करते हैं, और यही लोग होते हैं कि जो अपने इल्म और अपनी शान और शौकत की वजह से माशरे पर अपना असर कायम किए हुए होते हैं। पैगंबर उठते हैं और वो उठकर एक एक शख्स में से इनमें से खिताब करके उसको बिल्कुल बराना कर देते हैं, वो बता देते हैं कि इनके पास दलील कितनी है और इनके पास तासुब कितना है, ये काम करते हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत, बड़ी दिलसोजी और बड़ी रहमत और शफकत के साथ। इसमें खिताब इधर होता है, लेकिन अब उस खिताब के नतीजे में एक आम आदमी, एक नाबीना, एक देहाती, एक बद्दू आ गया तो फिर उसके बाद कुरान मजीद ये कहता है कि सारी दिलदारियों का मुस्तक वो है जो आ गया, यानी मुखातब तो उनको ठहराया जाएगा। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने इस सुन्नत को इस तरह वाजे किया है कि पहले मरहले में उन्होंने फरीसियों, फकीहों, अपनी कौम के अकाबिर आयान को दावत दी। फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब उन्होंने महसूस कर लिया कि ये लोग तो कुफर पर जमे हुए हैं, तब उन्होंने दरिया के किनारे मछली पकड़ने वालों से जाकर ये कहा कि ओ मछलियां पकड़ने वालों, आओ मैं तुम्हें आदमी पकड़ने का सबक सिखाऊं। तब जाकर कहा, यानी दावत का रुख नीचे की तबके की तरफ होगा जब ऊपर के तबके से मायूसी हो जाती है, वरना पहले उसी को खिताब किया जाता है। ये बात खुद इस दावत की शान का भी तकाजा है। ये दावत आमतुल नास के जज्बात को बड़काकर नहीं उठती, ये दलील की दावत है। इसको अपने बारे में इस बात पर इसरार है कि ये एक ऐसा हक है कि जिसको हर शख्स के सामने पेश किया जा सकता है। ये नहीं करती कि नीचे के बाद तबकात को जाकर जो बेचारे सोचने समझने की सलाहियत से बहुत हद तक आरी होते हैं, कुछ जज्बाती बातें बताई जाएं और वो उठ खड़े हों, ये इस तरह की कोई तबकाती जंग बर्पा नहीं करती। ये तो ऊपर के लोगों को खिताब करके कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो बातिल है और ये हक है, इस हक के दलाइल ये है, जिसमें हिम्मत है वो इन दलाइल का मुआवजा करे, आए सामने बताए इसमें क्या खामी है, क्या गलती है। इस दावत का उसूल ये है, पैगंबरों की दावत में इस चीज को भी एक बुनियादी हैसियत हासिल है हमेशा। इसी तरह ये बात भी जान लीजिए कि पैगंबर अपनी दावत में इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो मुखातब की जहानत, मुखातब की सलाहियत, मुखातब की इस्तेदाद के लिहाज से बात करें। यानी अगर मुखातब इल्मी बात समझ सकता है तो वो बाप खोले, नहीं समझ सकता है तो बहरहाल जो बातें वो समझ सकता है उसको बताएं। जो भी सामने आ गया है उसकी अकल के लिहाज से, उसकी सलाहियत के लिहाज से, उसकी इस्तेदाद के लिहाज से वो बात करते हैं, ये उनका तरीका होता है। और हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि बेलिसाने कौम खिताब करें, यानी जो लोगों की जुबान है उसी जुबान में उनको दावत पहुंचाएं। ये नहीं है कि लोग तो बेचारे और जान रहे हैं और बोल रहे हैं और वो वहां अरशे मौला से कलाम करना शुरू कर देंगे जहां उनका कलाम उन्हीं के पास रह जाए, उनका कहा वो आप समझे या खुदा समझे। बहरहाल बिलिसाने कौम खिताब करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी कौम के आला तरीन तबकात की जबान में उनके सामने दावत पेश करें, लेकिन आला तरीन तबकात ही की जबान में। कुरान मजीद की जुबान कुरैश के अकाबिर की जुबान है, इधर उधर के बद्दुओं की जुबान नहीं है, कुरैश के अकाबिर की जुबान उसमें। और बहरहाल अपनी दावत का जो कंटेंट है उसमें इस बात का पूरा लिहाज रखते हैं कि आला तबकात जहनी लिहाज से उसके ऊपर कोई एतराज न कर सके, शान उसकी कायम रहे। इसी तरीके से वो इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि वो जिस कौम को खिताब कर रहे हैं वो खड़ी कहां है। यानी ये नहीं है कि कोई तरीका ईजाद कर लिया कि अच्छा पहले ये बात कहनी है, फिर ये बात कहनी है, फिर ये बात कहनी है, ये कोई तरीका लगा बंदा नहीं है, इसका ताल्लुक हालात से। चनाचे देखिए कि बनी इस्माइल जब रसूलुल्लाह सल्लम के मुखातब हुए तो वो बेचारे तो ना शरीयत से वाकिफ थे, ना शरीयत में पैदा की हुई बिदात से वाकिफ थे, ना किताब से वाकिफ थे, ना रसूलों के सिलसिले से पूरी तरह वाकिफ थे। उनके यहां इब्राहिमी दौर की रवायात बहुत मद्दम पड़ चुकी हुई थी, लिहाजा वहां दावत में ज्यादातर وہ چیزیں رہیں جن کا تعلق یا تو بنیادی عقائد سے یعنی توحید سے، رسالت سے، آخرت سے، یا پھر ان نیکیوں سے ہے کہ جو انسان کی فطرت پر مبنی ہے، مسکین کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی گردنیں چھڑواؤ، یعنی وہ باتیں کہ جن باتوں کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر سلیم الفطرت آدمی جانتا ہوتا ہے کہ یہ باتیں حق ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے تو دعوت کا بالکل مزاج بدل گیا. اب ان کی تاریخ بھی زیر بحث ہے، اب ان کی بدعتیں بھی زیر بحث ہیں، اب عقائد میں ان کی خرابیاں بھی زیر بحث ہیں، اب عمل میں ان کی خرابیاں بھی زیر بحث ہیں، اب انہوں نے جس جس طریقے سے دین میں رکھنے نکال رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی اب دعوت کی نوعیت بالکل بدل گئی. اس وجہ سے جو بعض لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے آ کر تو پہلے توحید رسالت کی دعوت دی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے ہی انہوں نے کیا، لیکن بنی اسماعیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے نہیں کیا. بنی اسرائیل کے ساتھ تو پورا کا پورا وہ دین زیر بحث آ گیا ہے جو دین اس وقت موجود تھا اور جس دین کے وہ علمبردار تھے. کسی نے سوال اگر کر دیا ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں بھی، اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوال کر دیا، یعنی ان کی میتھولوجی تک بھی زیر بحث آ گئی، ان کی روایات تک بھی زیر بحث آ گئی ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ جو چیز بھی ہے اس کو موضوع بنا لیا گیا اور موضوع بنانے کے بعد مسئلے کو صاف کیا گیا. تو اس وجہ سے اگر ہماری امت میں بھی کوئی شخص دین کی دعوت دے کر اٹھے گا تو اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس میں امراض کہاں کہاں ہیں اور امراض کیا کیا ہے. امراض علمی بھی ہیں، امراض فکری بھی ہیں، امراض عقیدے میں بھی ہیں، امراض عمل میں بھی ہیں، امراض دین کے تصورات میں بھی ہیں، امراض روایات میں بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. لہذا اس قوم کو خطاب کرتے وقت ظاہر بات ہے کہ ان تمام امراض کا لحاظ کر کے یہ بتانا پڑے گا کہاں کہاں اصلاح کرنی ہے. البتہ اس میں ایک بات لازمی طور پر ملحوظ رہنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ان امراض کا علاج کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دین میں ہر چیز کی ایک قیمت مقرر ہے. توحید کی قیمت من ہو سکتی ہے، رسالت کی قیمت من ہو سکتی ہے، آخرت کی قیمت من ہو سکتی ہے، لیکن راستے سے کانٹا اٹھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھنا، ان کی قیمت من نہیں ہے. یعنی یہ بھی دین کے حکم ہے. تو آپ دین کی دعوت جب لے کے اٹھتے ہیں تو اس بات کا پورا لحاظ رکھیے کہ کیا چیز دین میں من ہے، کیا سیر ہے، کیا چھٹانک ہے، کیا تولا ہے، کیا معاشا ہے. معاشے کو بڑھا کر تولا نہیں بنائیے اور من کو گھٹا کر معاشا نہیں بنائیے. جو چیز جتنی ہے اس کو اتنی اہمیت دیجئے اور اتنا ہی اس پر وقت صرف کیجئے. اس چیز کا پورا لحاظ رکھیے. تاہم ہماری ملت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ شراب ایک ممنوع چیز ہے، یا مثال کے طور پر یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ سود کو پیغمبروں نے حرام قرار دیا ہے. ہماری ملت کے اندر پورے دین کی روایتیں موجود ہیں. یعنی اگر غلط ہیں تو تب بھی موجود ہیں، صحیح ہیں تو تب بھی موجود ہیں. اس لیے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو معیشتی کے مسئلے کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑ جائے، دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو سیکولرزم کے ساتھ مسئلہ درپیش آ جائے، دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو سیاسی امور سے متعلق ہی دین کی ہدایت کے معاملے میں مارکا لڑنا پڑ جائے، دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو قانون کے مسائل ہی زیر بحث آ جائے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 10-11 سال جو ہمارے گزرے جس میں ہمارے ملک پر ایک ایسے شخص حکمران ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق یہ کوشش کی کہ جتنا بھی دین ان کو معلوم ہو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. یعنی میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش کتنی اچھی تھی کتنی بری تھی، بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی. جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اب یہ دیکھیے کہ دعوت فرض کر لیجئے اس سے پہلے سے معاشرے میں موجود ہے، تو وہ موضوعات جو اس وقت زیر بحث آ گئے ہیں وہ اس سے پہلے اہمیت نہیں رکھتے. اس وقت تو دیت کا مسئلہ بھی اہم ہو گیا، شہادت کا مسئلہ بھی اہم ہو گیا. اس وقت ایک مسلمان معاشرے میں کھڑے ہو کر اگر کوئی دائی یہ کہتا ہے کہ پہلے میں تو ایمان کی دعوت دوں گا تو یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں. مسئلہ جو پیش آ گیا ہے اس کو حل کیا جائے گا، اس کے بارے میں ذہن صاف کیا جائے گا اور صحیح موقع کے اوپر صحیح بات لوگوں کو بتائی جائے گی. دین پورا کا پورا دعوت کا موضوع ہے. اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی آدمی کو کسی مسلمان ملت کے اندر نہ توحید میں کوئی اشکال ہو نہ رسالت میں کوئی اشکال ہو، وہ دین کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا اور چھوڑ کر بیٹھنے کی وجہ معلوم کرنا چاہیں تو یہ پتا چلے کہ لانڈی غلاموں کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. روز تجربہ کر لیجیے. یعنی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی بہت چھوٹا سا حکم تھا، اس حکم کے بارے میں کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی، وہ اس کی عقل پر پورا نہیں اترا اور یہ چیز ارتداد کا باعث بنی. تو یہاں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس مسئلے پر بعد میں بحث کرنا ہے. پورا دین موجود ہے، اس میں جو اعتراض بھی ہوگا، جو اشکال بھی سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے ذوالقرنین پر تقریر کرنی پڑے، ہو سکتا ہے ملکہ سبا پر تقریر کرنی پڑے، ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی داستان سنانی پڑے. یعنی قوم کے احوال کے لحاظ سے دعوت کا کانٹینٹ ترتیب پاتا چلا جائے گا. یہ ایک دائی فیصلہ کرتا ہے कि मेरी कौम में ये मर्ज है, मेरी कौम में ये मर्ज है, वो अपने तौर पर भी तय करता है कि मुझे इन इन चीजों को दूर करना है, और बाज औकात हालात बाज चीजों को गैर मामूली अहमियत दे देते हैं और उस गैर मामूली अहमियत के लिहाज से उनको मौजू बनाना पड़ता है। कोई चारा इसके सिवा किसी दाई के लिए नहीं होता है। इस दौरान में जब वो ये काम कर रहा होता है तो उसके मुकाबले में जो लोग मौजूद होते हैं वो जाहिर है कि मजहबी उलमा भी हो सकते हैं, वो आम दानिशवर भी हो सकते हैं, वो माशरे के असर रसूख रखने वाले तबकात भी हो सकते हैं, वो आमतुल नास भी हो सकते हैं। यानी सुन तो हर शख्स लेगा ना। अब ये जितने भी लोग उसके मुखातब हो सकते हैं ये तरह तरह की बिदतों तरह तरह की जलालतों में मुब्तला